Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahimna Stotra, presented by Swami Sri Muktanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
अभी अभी जिन्होंने बहुत सुंदर भजन सुनाया, ऐसे हमारे शास्त्री जी, शास्त्री द्वय जी, हमारे श्री अनंतराम शास्त्री जी और श्री हरिभाई शास्त्री जी और हमारे श्री सम्माननीय सोमदत्त जी तथा इस आश्रम के सभी भक्तवृंद, उपस्थित माताओं बहनों, हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने महाराज श्री का दर्शन नहीं किया शरीर से। घर तो छोड़ दिया था जिस समय महाराज जी शरीर में थे, उससे पहले ही। महाराज जी का शरीर तो 87 में और हमने 81 में घर छोड़ दिया था। लेकिन हम घर छोड़ करके हिमालय की तरफ चले गए। वृंदावन की तरफ आते तो शायद दर्शन हो जाते हैं। और जब हिमालय से हम वापस आए 2000 में, तो फिर महाराज श्री का ये शरीर पंचभौतिक देह अपनी लीला का विश्राम करके पूर्ण हो चुका था। लेकिन महाराज श्री का हमारा परिचय, उनकी एक पुस्तक जो आजकल किसी दूसरे नाम से है, यज्ञ दान और तप, एक पुस्तक थी उनकी, है जी, व्यवहार शुद्धि के नाम से आजकल है। पहले पुस्तक यज्ञ दान और तप से थी, तो हम पढ़ने में बड़ा आनंद लेते थे। हम गंगोत्री में रहते, हमने 3 महीने में पूरी अष्टाध्यायी क्रम से याद की थी। वृद्धि राधे चदय गुण एक गुण वृद्धि ने धातुल पार धातु की, पूरी क्रम से। और हम वही पढ़ते थे जिसमें कुछ सार निकलता था। हमने नॉवल आज तक नहीं पढ़ा। अपने जीवन में परम स्वतंत्र रहे, आज तक कोई पिक्चर नहीं देखी। अभी भी आश्रम में हम टीवी और समाचार पत्र दोनों नहीं रखते। उपनिषदें हमने पढ़ी, ब्रह्मसूत्र पढ़ा, ये शांकर भाष्य पढ़े, हमने महाराज श्री आचार्य श्री रामानुज जी श्री का श्री भाष्य भी पढ़ा। परंपरा से हम पढ़ते थे, तो हमें तो सार चाहिए था, सार। और जब सार में किसी ने हमें पुस्तक दी यज्ञ दान और तप, तो हमने उसको पढ़ा तो हमें लगता ये महापुरुष हैं, इनके और भी ग्रंथ होंगे और हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। हमारा उनका जो एक प्रकार से मिलन है महाराज श्री के साथ, वो वांग्मय मिलन है, वांग्मय मिलन। और वो मिलन शायद हमें नहीं लगता कि हमने उनके दर्शन ना किए हों, हमें ऐसा भी नहीं लगता जैसे वो हमसे दूर हों, ऐसा भी हमें नहीं लगता। शायद हमारी जितनी उनमें निष्ठा है, उनका साहित्य पढ़ करके हमारी बहुत निष्ठा है। और हमारी निष्ठा जो है, हम तो हृदयन मूर्धानम संसिव्य वाले हैं, दिल और दिमाग दोनों से काम लेने वाले हैं। खाली दिल से भी नहीं लेते और खाली दिमाग से भी नहीं लेते, इसलिए हमारी जो निष्ठा वो बिना हिले हुए है, हिल नहीं सकती। वो निष्ठा हिल नहीं सकती, ऐसी निष्ठा है। लेकिन महाराज श्री के विषय में हम बात करेंगे और उनकी ज्ञान की थोड़ी सी बात कर लें। आनंद जयंती में ज्ञान बिना आनंद कैसे आएगा बताओ? अंधकार में आप प्रकाश बिना कुछ दिखाई देगा आपको? अच्छा, अब हम एक ग्रंथ उनका स्वाध्याय कर रहे थे, वाल्मीकि रामायण महाराज जी। देखो, ज्ञान की बात हम बताते हैं क्योंकि हमारा उनका संबंध वांग्मय संबंध है। और उन्होंने लिखा, बड़ा प्यारा लिखा शास्त्री जी, मैं उससे मैं बोला नहीं भरत के प्रसंग में। वो कहते हैं कि भरत की भक्ति, भरत का समर्पण, तो समर्पण हमारे यहां रामानुजाचार्य ने कि यहां बड़ा महत्वपूर्ण है समर्पण का भाव। बिल्ली के बच्चे और बंदर के बच्चे का उदाहरण देकर के समझाते हैं, दो प्रकार का, एक प्रपत्ति है और एक समर्पण है। तो जो क्या भरत के समर्पण में कोई कमी थी? क्या भगवान राम में कोई कमी थी? तो अगर भरत का समर्पण पूर्ण था तो क्या भरत को सफलता मिली? राम जी गए अयोध्या वापस, तो कमी समर्पण में थी अथवा जिसके प्रति समर्पित हो रहे उनमें थी। अगर भरत में पूर्ण समर्पण था तो भरत सफल क्यों नहीं हुए, है ना बात। इसलिए हम वांग में संबंध रखते हैं उनका। तो वो लिखते हैं, न तो भरत के समर्पण में कमी थी और न भगवान में कमी थी। अगर भक्त में कोई दोष होता तो भक्ति के कारण भगवान उसके सारे दोषों को समाप्त कर देते हैं। तो फिर प्रतिबंध क्या था, प्रतिबंधक क्या था कि भगवान श्री राम अयोध्या नहीं आए भरत के कहने से, प्रतिबंधक क्या था? तो कहते हैं धर्म। क्या प्रतिबंधक था? धर्म। लक्ष्मण ने कहा, महाराज राजा आप ही हैं। रामोपि परमोदारः, राम लक्ष्मण का नाम। भरत जी ने कहा राजा आप ही हैं, तो राम और भी उदार है। कहते हैं राजा आप ही क्यों? क्योंकि पिता ने मुझे वनवास दिया है। ये जो पिता की आज्ञा के पालन का जो धर्म है, ये धर्म प्रतिबंधक था। अगर भक्त में कोई दोष हुआ होता तो भगवान उसको मार्जन कर देते, भगवान उसको सफा कर देते, साफ कर देते, प्रक्षालित कर देते। और प्रक्षालित क्या, भक्ति आने पर दोष रहता ही नहीं है। भक्ति आने पर तो न भगवान राम में कोई कमी है, यानी जिसके प्रति हम समर्पित हो रहे हैं वो तो पूर्ण है, और ना ही भक्त की भक्ति, भरत की भक्ति में, भरत के समर्पण में कोई कमी है। अगर दोनों के बीच में कोई प्रतिबंधक है तो वह प्रतिबंधक है धर्म का। कौन सा प्रतिबंधक है? धर्म का प्रतिबंधक है, एक बात। दूसरी बात, देखो हमें महाराज श्री का साहित्य बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, और उनकी बहुत बहुत उनकी इस तरह की जो ये बीच के जो है ना, इस तरह के बहुत संस्मरण हमें मालूम है, जो उन्होंने कहे हैं, जो उन्होंने कहे जो बीच की गुत्थियां सुलझाने वाली हैं। महाराज श्री शुरू से ही, प्रारंभ से ही संतों के जो सिद्ध संत महापुरुष है उनका उन्होंने सत्संग किया, और सत्संग किया इसका अर्थ है महाराज श्री आए ही स्पेशल किसी उद्देश्य के लिए थे। हमारे यहां ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उनमें अवतार आठ प्रकार के माने, आठ प्रकार के। एक तो पूर्ण अवतार है, एक अंशावतार है, एक अंशांशावतार है, कारकावतार है, ऐसे भगवान के अनेक अवतार माने हैं। तो प्रत्येक जो इस प्रकार के सिद्ध महापुरुष आते हैं, जो कुछ काल के लिए आते, अपनी लीला करते हैं और फिर चले जाते हैं, महापुरुषों का आविर्भाव और तिरोभाव ही हुआ करता है, आविर्भाव और तिरोभाव ही हुआ करता है। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद जी महाराज इस काल में बहुत सी ऐसी गुत्थियां हैं, अगर वो नहीं आते तो सुलझ नहीं सकती थी, अगर वो नहीं आते तो सुलझ नहीं सकती थी। और हम आपको सच बताएं, अगर अखंडानंद जी महाराज ने भागवत के ऊपर नहीं लिखा होता तो हम भागवत कभी पढ़ने वाले भी नहीं थे। हमारा तो यह था कि श्री कृष्ण ने रासलीला की होगी, वो अपने समय में कर गए, अब हमारे क्या काम हो रासलीला। अब हम तो अपनी बात बताते, नाराज नहीं होना, मैं हमारे क्या काम क्यों रासलीला की होगी उन्होंने। लेकिन महाराज श्री ने बताया रसो वही, ये उनके शब्द बता रहा हूं मैं, रसो वही सह रसानाम समूह एव रास। जो रसों का समूह है, जो हमारी आंख से रस टपक रहा है, हमारे कान से रस टपक रहा है, हमारी नासिका से रस टपक रहा है, हमारी प्रत्येक इंद्रियों से जो रस टपक रहा है, वह टपकने वाले रस का जो समूह है उसका नाम रास है। और भगवान यदि आप अपने अंदर लेकर के आ जाएं तो आपकी हर इंद्रियों से रस टपकने लग जाएगा, हर इंद्रियों में भगवान आने लग जाएंगे। ये उनका मतलब जो क्लू है, क्लू जिसको कहते हैं ना चाबी। अगर आप गेट के ऊपर खड़े मोक्ष के द्वार पर और चाबी नहीं है तो आपको वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए अखंडानंद जी महाराज जैसे सिद्ध पुरुषों से चाबी लेकर के जाना, आपको एकदम गेट खुल जाएगा, और नहीं तो लौट करके आना पड़ेगा। ईमानदारी की बात है। तो ये जो कुछ क्लू है उनके, देखो आप हमारी बात को अन्यथा नहीं लेना, क्योंकि हम जो सही लगता था वो बोल रहे हैं। उस समय हमारी ऐसी स्थिति थी। ये जो क्लू है, ये वर्तमान समय में अगर अखंडानंद जी महाराज नहीं लिखते भागवत के ऊपर तो ठीक है, भागवत आजकल का दूसरा रूप हो गया, लेकिन उसका रहस्य यदि जानना हो, उसका सार यदि जानना हो, उसका यदि वास्तव में आनंद लेना हो, वास्तव में आनंद अगर आपको लेना हो, एक तो है कि आपने श्री कृष्ण के भजन सुने आपको बहुत अच्छा लगा कितनी देर, और अगर वास्तव में आपको श्री कृष्ण अपने अंदर बैठाने हैं तो, और उस जीवन भर आपको बैठाने हैं, जीवन भर आपको अपने साथ रखते हैं, तो महाराज श्री की भागवत पढ़िए, जीवन में आपके श्री कृष्ण आ जाएंगे। उनका शब्द देखिए, शब्द महाराज श्री की जो शांत रस है, जो शांत रस है उसका नाम ब्रह्म है, और जो उछलता हुआ रस है उसका नाम श्री कृष्ण है। ये उनके शब्द मेरे नहीं है, जो शांत रस है उनका नाम ब्रह्म है, और जो उछल रहे हैं तरंगायित हैं, जो तरंगायित है उनका नाम श्री कृष्ण है, और जो शांत और तरंगायित रसों के बीच में बैठे हुए हैं उनका नाम स्वामी अखंडानंद जी है। जो तरंगायित रस का, ब्रह्म के उस रस का जो तरंगायित, उसका भी आनंद ले रहे हैं, और जो उपनिषद पर बोलते हैं तो शांत रस का भी आनंद ले रहे हैं। और ये बात, एक बात बताएं हम आपको, हमारे यहां माने हम सबके यहां कुछ लोग कहते हैं शांतोपी नवमो रस, साहित्य की भाषा है, कुछ कहते हैं आठ रस होते, कुछ कहते हैं नौ रस होते। जिन्होंने आठ रस माना वो शांत रस को इन सबकी उत्पत्ति मानते हैं। जैसे सागर शांत होता है और शांत सागर में ही तरंगे आती हैं, ऐसे ही शांत ब्रह्म में ही ये सारी की सारी तरंगे आ रही हैं। वो प्रेमपुरी जी की तरंग है, कभी अखंडानंद जी महाराज की तरंग है, तो कभी रामानुजाचार्य महाराज की है, तो कभी वल्लभाचार्य महाराज की है, तो कभी शंकराचार्य जी महाराज की है, तो कभी अनेक जो तरंग हो रही हैं, ये उसी एक शांत ब्रह्म की तरंगे हैं। उनको ब्रह्म रूप देखो और तो आपको आनंद आएगा, जीवन में महाराज श्री भी आ जाएंगे। तो उनके जो क्लू हैं उपनिषद में भी कुछ ऐसे क्लू हैं, उपनिषद में भी रामायण में भी कुछ ऐसे क्लू हैं। अब अगर आप थोड़ा सा स्वाध्यायशील बने, देखो एक बात बताएं, आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बचपन से आपको बच्चा पैदा होते सिखाते बेटा एप्पल एप्पल, तो हमें लगता नहीं हमने परिश्रम की, हमें आज तक समझने में नहीं आया इंग्लिश का, ये लिखते साले हैं बोलते सेल है, आज तक हमारी समझ में नहीं आया, फिर भी लगता है कि इंग्लिश सरल है। इंग्लिश से ज्यादा सरल संस्कृत है, और संस्कृत ज्यादा सरल है, और महाराज श्री की भाषा तो बहुत ही सरल है। थोड़ा सा अभ्यास आप करें तो, थोड़ा सा स्वाध्याय आप करें, भाई थोड़ा सा तो आपको भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ गंगा जी का पानी बहुत सरल है, आप निगल सकते हो, पी सकते हो, इतना सरल है, गले में अटकने वाला नहीं है, लेकिन गंगा जी तक तो जाना ही पड़ेगा। अगर गंगा जी तक नहीं जा सकते हो तो गंगा जी का जल ले आओ, अगर आप महाराज जी तक नहीं जा सकते हो तो गिरीश आनंद जी महाराज को ले आओ, ये उनका रस आपको पिला देंगे। तो मेरा कहने का अर्थ है आप थोड़ा स्वाध्यायशील बनो, महाराज श्री के उपनिषदों को, महाराज श्री के भागवत को, उनका भागवत दर्शन है, भागवत भागवतामृत है उनकी, और एक भागवत व्यंजन है,
भागवत सर्वस्व है।
भागवत सर्वस्व है। पिछले साल तो हमारे दैया जी ने कहा कि एक भागवत की पुस्तक का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया जाए, क्यों? क्योंकि आजकल हिंदी कम जानते हैं और इंग्लिश, ताकि नए बालक नए बच्चे इंग्लिश में और महाराज श्री को पढ़ सकें। ऐसे पुण्यशील व्यक्ति जब महाराज श्री का कार्य करवाते हैं तो समझ लो महाराज श्री ही उनके अंदर बैठे हैं। तो ये अखंडानंद महाराज जी की जयंती है, ये तो आनंद की जयंती है, आनंद की जयंती महाराज जी, आनंद की जयंती है। इसलिए कुछ आपको वांग्मय आनंद भी हमने दिया, और ये तो आनंद है ना भाई। किसी ने पूछा ब्रह्म क्या है, है? किसी ने पूछा ब्रह्म क्या है, अरे बोला तू ही है और कोई नहीं है, ब्रह्म तो तू ही है, बस पहचानना भूल गया अपने आप को। तो महाराज श्री ने हमें बताया ये ब्रह्म के लिए आपको कहीं जाना नहीं, कहीं जाना नहीं, निरावरण हो जाना है। निरावरण हो जाना है तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब जगह आनंद ही आनंद है। बस और ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि घड़ी भी सामने है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लूंगा। और वास्तव में हम तो महाराज श्री के बहुत कृतज्ञ भी हैं, और निश्चित रूप से भागवत को लेकर के हम महाराज श्री को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। तो उपनिषद हमने पढ़े थे, ब्रह्मसूत्र वगैरह अध्ययन किया था, शांकर भाष्य का अध्ययन किया था हमने, अनयोग व्यवच्छेदी का, द्वात्रिंशी का, जैनियों का, स्यादवाद, मंजरी, मेरी सारी याद थी, हमारे बौद्ध का, माध्यमिक कार्य का हमारी याद थी। लेकिन भागवत जैसा ग्रंथ, दिव्य ग्रंथ अगर हमारे जीवन में आया है तो महाराज श्री की वजह से आया है, और इसको हम डिमडिम घोष से कहते हैं, ओम शांति शांति शांति। और जो थोड़ा बहुत भक्ति आई है ना, भक्ति थोड़ी बहुत भक्ति आई होगी ऋषानंद जी महाराज की आई, और अब तक हम शिव जी की बचपन से आराधना तो करते थे, लेकिन शिव जी की निष्ठा क्या है वो भी नहीं चाहिए, इनकी राम जी की निष्ठा को देख करके देखो। तो हम तो जैसे महाराज जी के बहुत कृतज्ञ, बहुत ऋणी हैं, बहुत कृतज्ञ और बहुत ऋणी हैं। अब मित्र का ना तो कोई ऋणी होता ना तो कृतज्ञ होता, हमारे आत्मस्वरूप है, इसलिए हम इनके बहुत आभारी हैं। इन्होंने हमें भक्ति भी दी और थोड़ी निष्ठा भी दी। ओम शांति शांति।
नारायण स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज को हम सभी ने सुना, और वास्तव में आनंद जयंती का आनंद दिया आपने। आप लोगों ने जैसे वेदांत का आनंद, भक्ति का आनंद, और उनके जीवन का संबंध पूज्य गुरुदेव के साथ वांग्मय विग्रह के माध्यम से है, और वो वास्तविक संबंध है, स्वाभाविक संबंध है। स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जिन्होंने स्वयं बताया कि हम भागवत पढ़ने वाले नहीं थे, अगर पूज्य गुरुदेव का भागवत दर्शन नहीं होता, और स्वामी जी को शायद स्वयं को भी नहीं पता लगा होगा कि इनके जीवन में भक्ति का प्रवेश कब हो गया,
पता लगा
हुआ। जब भी हुआ तो ये महाराज जी स्वयं सुनाते थे, दो घटनाएं महाराज जी के जीवन की। एक बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं भिक्षु शंकरानंद जी, उनके विषय में महाराज जी स्वयं सुनाते थे, आप लोगों ने भी सुना होगा। वो भी भागवत के प्रति उनके कोई आस्था नहीं थी, बल्कि कभी कभी उसका उपहास करते थे। महाराज जी ने कहा मैं आपको भागवत सुनाऊंगा, और भागवत सप्ताह महाराज जी ने क्रम से नहीं सुनाया उनको, पहले महाराज जी ने उनको 11वां स्कंद सुनाया भिक्षु शंकरानंद जी को। वो सिद्ध फक्कड़ महात्मा, विरक्त महात्मा, बड़े विद्वान, वो मंडलेश्वरों को तो रोज ही कुछ ना कुछ प्रभाती सुनाते थे। प्रभाती समझिए ना, जितने मंडलेश्वर थे सबको, हाँ बोले लेशा विद्या का नाम लेकर के रहते हैं और सबको ठाट बाट करते हैं, बोले सब फालतू बात है। तो वो भिक्षु शंकरानंद जी, महाराज जी ने उनको पहले 11वां स्कंद सुनाया। वो बोले अरे ये वही श्री कृष्ण ये प्रवचन कर रहे हैं जिन्होंने रासलीला किया है, 11वें स्कंद का उद्धव को जो प्रवचन किया भगवान कृष्ण ने, उनको बहुत आश्चर्य हुआ। फिर महाराज जी ने उनको 7वां स्कंद सुनाया, प्रहलाद चरित्र और वर्णाश्रम धर्म, और जब वो इतने प्रभावित हुए उसके बाद 10वां स्कंद सुनाया महाराज जी ने भिक्षु शंकरानंद जी को। और आप जानते हैं महाराज जी कहते हैं कि भागवत पूरी होने के बाद, श्रवण के बाद, भिक्षु शंकरानंद जी ने कहा कि मैं आपको दक्षिणा दूंगा। भाई श्रोता का कर्तव्य है दक्षिणा देना। महाराज जी ने सोचा इनके पास ना तो कपड़ा है, ना कुटिया है, ना कोई बर्तन है, ये दक्षिणा क्या देंगे। बोले ठीक है, बोले एकांत में ले गए, और भिक्षु शंकरानंद जी ने जो दक्षिणा दिया, उन्होंने कहा पूज्य गुरुदेव को, तुम साक्षात ब्रह्म हो, आज के बाद कभी अपने को जो अनुभव मत करना, यह हमारी तुम्हारी दक्षिणा है भागवत श्रवण के। और महाराज जी कहते थे उसके बाद से कभी हमारे जीवन में जीव भाव हुआ ही नहीं। तो एक वो महापुरुष थे जिन्होंने महाराज जी से भागवत सुनकर के वो स्थिति प्राप्त की, भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकर्षित हुए, जिनको हमने सुना था, और एक ये है जिनको हमने देखा। आप लोगों को पता नहीं है, प्रेमपुरी में आने के पहले भक्ति वक्ति बिल्कुल ठाकुर जी को दूर से दंडवत कर लें तो बड़ी बात है। तो वो कहते भी आज भी जैसे कहा हमारे साथ रहने से, वृंदावन आने से भगवान, और वो स्वाभाविक है, मैंने देखा है जो ईमानदार संत हैं, साधु हैं, साधक हैं, अगर प्रारंभ में भक्ति आ जाती है तो उनके जीवन में ज्ञान अवश्य आता है, और प्रारंभ में अगर वेदांत में प्रवेश हो गया तो उनके जीवन में भक्ति भगवान किसी संत के माध्यम से या स्वयं प्रकट होकर के देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर भक्ति के पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य भागवत में ही लिखा है, तो बिना पुत्र के मां भी दुखी रहती है, वो भी वहां लिखा है। भक्तों को अगर ज्ञान वैराग्य से परहेज है तो वास्तविक भक्त नहीं, और उनके जीवन में दुख रहेगा जब तक ज्ञान वैराग्य से परहेज रहेगा। और अगर कोई वेदांती कहता है कि हमको भक्ति की जरूरत नहीं है तो बंध्या पुत्र है। भक्ति का बेटा ही ज्ञान वैराग्य है, अगर मां नहीं है तो बेटा आया कहां से, वो बंध्या पुत्र है। तो ये दोनों का एक सुंदर समन्वय है, वो भक्ति हो कि ज्ञान हो। और हमारे महाराज जी के जीवन में जैसे स्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही, वो दोनों में ही उनका जीवन पूर्ण था, और उनके जीवन के अनेक चाबियां हम लोगों को देके गए हैं, जो दरवाजा खोलने की कुंजियां है, चाबियां है, और उनके जीवन के संस्मरण, वो किस क्षेत्र में नहीं थे यही कहना कठिन है। वेदांती हो तो उनके मध्य में सहज भाषा, परम पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज के विषय महाराज जी कहते थे, एक जगह कई सम्मेलन में गए थे और महाराज जी अपने शिविर में थे, तो पूज्य महामंडलेश्वर जी वहां गए, स्वाभाविक पूछा, महाराज जी क्या हो रहा है, बहुत विलंब हो गया। बोले स्वामी जी बिना हुए हुए ही सब प्रतीत हो रहा है, कुछ हुआ नहीं। बिना हुए, अब देखे वेदांत की सहज, अद्वैत वेदांत की सहज निष्ठा वार्तालाप में उनके प्रकट होती थी। और जब वो वृंदावन में रहते थे ब्रज में, बताऊं आपको स्वामी जी, आपने सुना ही होगा, जब ब्रज में रहते थे और भक्तों के बीच में बोलते थे, निम्बार्काचार्य महाराज के जो भक्त निम्बार्की होते थे, वल्लभाचार्य जी महाराज पुष्टि मार के भक्त जब बैठते थे, महाराज जी जब उखल बंधन लीला बोलते थे तो कहते थे, जानते हो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ब्रज में मटकी क्यों फोड़ी, ये मटके क्यों फोड़े भगवान ने, यशोदा मैया को इतना कष्ट हुआ मटकी फोड़ने से, तो क्यों फोड़ दी, नहीं फोड़ते। बोले वो मटकी फोड़ने का बड़ा रहस्य था। क्या रहस्य था? बोले इधर बनारस है उधर हरिद्वार है, दोनों जगह घटपट की खटपट करने वाले रहते हैं, हरिद्वार में भी बनारस में भी, हाँ घटपट खटपट तंतु और सूत्र, और ये महाराज ये प्राग भाव प्रध्वंसा भाव ये अत्यंता भाव, ये दोनों का आप गिरीश भाई जानते ही हैं यहाँ के जितने लोग हैं। तो महाराज जी कहते थे कि भगवान कृष्ण ने ब्रज में पहले ही घटत ध्वंस कर दिया, जिससे बनारस से और हरिद्वार से कोई घटपट की खटपट करने वाला ब्रज में ना आवे, और आवे भी तो कृष्ण भक्त बन करके जाए, जहां मधुसूदन सरस्वती जैसे अद्वैत वेदांती आए और कृष्ण प्रेमी बन करके जाते हैं, और जहां हमारे स्वामी मुक्तानंद जी आए कृष्ण भक्त को बन करके निकलते हैं। ये ब्रज है, ये भगवान कृष्ण का रस है, और ये हमारे पूज्य महाराज श्री जी के आनंद जयंती का आनंद है। कितने संस्मरण उनके जीवन के। एक बार एक दिल्ली के हाईकोर्ट के वकील ने पूछा, महाराज जी मैंने सुना है कि जिनके पास पैसा बहुत होता है और वो धार्मिक कार्यों में नहीं लगाते, वो मरने के बाद अगले जन्म में काला नाग बनते हैं, कोबरा, और कहीं कहीं लिखा भी है, वो स्वाभाविक पूछ दिया। लेकिन महाराज जी का कितना विलक्षण व्यक्तित्व था, महाराज जी देखे यहां बहुत पैसे वाले बैठे, लिखा तो है लेकिन बोल दूंगा तो इनको थोड़ा संकोच होगा, धक्का लगेगा। और वो जो वकील था हाईकोर्ट का, वो महाराज जी का शिष्य था, शिष्य को गुरु कुछ भी बोल सकता है। महाराज जी ने कहा, भारद्वाज नाम था उसका, बोले भारद्वाज पैसे वाले कोबरा बनते हैं कि नहीं बनते ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो वकील होते हैं, यहां कोई वकील हो तो नाराज मत होना, बोले जो वकील होते हैं ना वो अगले जन्म में दो मुंह वाला सांप बनते हैं। एक गांव के लोग अगर यहां होंगे तो जानते होंगे, एक सर्प होता है, गेहुआ कलर का होता है, वो दोनों साइड से चलता है, छह महीना एक साइड से चलता है, छह महीना दूसरे साइड से चलता है। तो बोले वकील दो मुंह वाला साहब बनता अगले जन्म में। बोले क्यों महाराज? बोले वो दोनों पार्टी से पैसा खाता है। वो कभी केस को सॉल्व होने ही नहीं देता, डेट बढ़ाता रहता है। वो भरद्वाज तो इतना हंसा वो प्रश्न ही भूल गया अपना। तो ये एक महापुरुष का विलक्षण व्यक्तित्व, वो कौन पूछने वाला है ये देखते थे, क्या पूछा जा रहा है बाद में देखते थे। एक बार एक हमारे आश्रम में नाई था, हम लोग तो रहे हैं महाराज जी की सेवा में 5 साल, उनका सानिध्य मिला, बाकी तो मैं 30 साल रहा वृंदावन में। नाई था, सभी संतों की सेवा करता था। उसने पूछा, प्रश्नोत्तर होते थे तो भाई सबको अधिकार था, खड़ा होकर पूछा, महाराज जी निष्काम सेवा क्या होती है? तो महाराज जी देखे, बोले कौन पूछ रहा है? तो पहले वो देखते थे पूछने वाला कौन है। एक प्रश्न का एक ही जवाब सबके लिए नहीं होता था। लोगों ने बताया महाराज ये नाई है जो सबकी सेवा करता है। महाराज जी ने कहा कि तुम बिना पैसे लिए सबके बाल बनाया करो, यही निष्काम सेवा। अब देखिए शास्त्र का रहस्य भी इसमें है और उस व्यक्ति के लिए सटीक जवाब भी इसमें है। ये महाराज जी की जो विलक्षणता थी, ये जो प्रस्तुति थी, तो ये शायद मेरे को लगता है शताब्दी में कहीं देखने को नहीं मिलती। और ये उनका आनंद छोटी छोटी बातों में। पूज्य जज स्वामी थे, हाईकोर्ट के जज थे, दिल्ली के आश्रम में रहे बहुत साल तक। उन्होंने कहा महाराज जी कोई प्रश्न ऐसा भी है जिसका जवाब आपको नहीं आता है? तो उन्हीं से पूछ रहे, क्योंकि सर्व प्रश्न के विलक्षण जवाब मिलते थे। बोले कोई प्रश्न ऐसा है जिसका जवाब आपको नहीं आता है महाराज जी? महाराज जी मुस्कराए और तुरंत बोले, यही एक ऐसा प्रश्न है। यही एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। मतलब अगर ये कहें कि सब प्रश्नों का जवाब आता है तो थोड़ा लोगों को लगेगा स्वाभिमान, और ये सत्य नहीं है कि उनको प्रश्नों का जवाब नहीं आता, ये भी नहीं कह सकते। तो बोले इसी प्रश्न का जवाब नहीं आता, बाकी सबका आता है। क्या उनके विलक्षण प्रतिभा थी? तो हम लोगों को लगता है कि ये कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे, ये तो साक्षात भगवान कृष्ण ने, जैसे स्वामी जी ने कहा ना, अपने कार्य के लिए, हम लोगों के लिए, अपने कार्य के लिए माने कोई उनका अपना कार्य नहीं था, हमारे आपके लिए इस धराधाम पर वो प्रकट हुए। और बहुत समय तक, और जैसे मधु भाई ने कहा, बहुत समय अगर वृंदावन के बाद सबसे ज्यादा कहीं रहे तो बॉम्बे में, और बॉम्बे में भी सबसे ज्यादा अगर सत्संग का आशीर्वाद उनका मिला तो श्री प्रेमपुरी आश्रम को मिला है। ये उनके एक तरह से रमण स्थली है। वो कितने वर्षों तक यहां रहे हैं, कितने वर्षों तक प्रवचन किए हैं, तो उनके पावन जयंती पर मैं भी अपने भाव पुष्प उनके चरणों में समर्पित करता हूं। प्रवचन हो गया मेरा, मत सोचना। प्रवचन हो गया, भाव पुष्प हो गया। अभी हमारे वयोवृद्ध संत